نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیرت نبوی کے سلسلے میں اگلے سیشن میں چلیں گے. ہم نے اس سے پیچھے دیکھا کہ کس طرح اسلام کی قیمت کوڑوں اور تکلیفوں کی صورت میں مسلمانوں کو سہنی پڑی اور جس کی انتہا پھر ایک بائیکاٹ پہ ہوئی. 3 سال تک سوشل اور اکنامک سیاسی اخلاقی قسم کا بائیکاٹ کیا ان لوگوں نے, لیکن ظلم آخر خود ہی بولتا ہے. 5 لوگوں کو خیال آیا کہ یہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے, مل کے بیٹھے, بات چیت کی, تھوڑا بہت ادھر ادھر معاملہ بگڑا, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ, لیکن کہا کہ نہیں اس معاہدے کو اب ہم خود ہی توڑتے ہیں. جب معاہدے کا صحیفہ نکالنے کے لیے حرم میں گئے تو دیکھا کہ وہاں بسمک اللہم کے علاوہ باقی ساری تحریر جو تھی اس کو دیمک کا کیڑا کھا گیا. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیڑے, جانور, مخلوق, یہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ایک اور مشکل جب آئی وہ کیا تھی کہ ابو طالب جو باہر کی دنیا میں اللہ کے نبی کا سہارا تھے وہ بیمار ہو گئے. آپ کا بیمار ہونا ایسے ہی تھا کہ گویا کہ ایک باہر جو 4 دیواری کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کا اللہ نے انتظام کیا تھا, اب اس میں رکھنے پڑ گئے. دوسری بات یہ تھی کہ مکہ والے ابو طالب کی وجہ سے جرت نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ آگے بڑھے, لہٰذا جب ابو طالب بیمار ہوئے تو مکہ والوں کو ایک خیال آیا کہ یہ بچیں گے نہیں. اب ان کو خود اپنے عزائم پتہ تھے کہ ان کے دنیا سے جاتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے شخص کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. تو کہنے لگے اگر ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم کچھ کہیں گے تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے. نوٹ کریں, باتوں کا خوف زیادہ ہے اللہ کے خوف سے. کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں کرائیں تو لوگ ہمیں بدنام کریں, ہم ایک بار پھر جا کے ابو طالب کے سامنے جا کے کچھ بات رکھتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, چلے جاتے ہیں. خیر یہ سب گئے اور جا کے ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, یعنی ایک بار پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بعد ایسی باتیں نہ کریں. خیر لوگوں کی باتوں پہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنی بات رکھ دی. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کو اگر وہ کہنے والے بن جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ دیں. عرب کون ہے؟ عربی بولنے والے ملک, اور عجمی اس کے بغیر سارے, یعنی غیر عربی لوگ. مطلب یہ تھا کہ ان کو پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے گی. یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے, یعنی پریشان ہو گئے. کہنے لگے صرف ایک بات, یعنی صرف ایک بات کہنے سے ہم ورلڈ لیڈر بن جائیں گے. اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ قریش اور عربوں کی گھٹی میں نا لیڈرشپ ہے, یہ بڑا بننا چاہتے ہیں. اور جہاں بھی قبائلی نظام ہوگا نا وہاں لیڈرشپ کا جذبہ لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا, کیونکہ جتنے فرقے اتنے لیڈر, جتنے قبیلے اتنے لیڈر, جتنی جماعتیں اتنے لیڈر. آج جو امت مسلمہ بٹی بٹی دکھتی ہے نا, سارے لیڈر, سارے مذہبی رہنما, ہر گروہ, ہر فرقہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں. نوٹ کریں, ہر بندہ کسی چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول پہ بات کرے, کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ فرقہ واریت اچھی چیز ہے اور جماعتوں اور گروہوں کی بانٹ اچھی ہے, لیکن کر کیوں نہیں پاتے عملی طور پہ لیڈرشپ؟ کیونکہ جب اتنے فرقے ایک فرقے میں ڈھلیں گے تو اتنے لیڈرز بھی تو معزول ہوں گے نا, پھر ان کو بھی تو لے آف ہونا پڑے گا. یہ چیز اور یہ قربانی دینا کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال آپ نے کہا کون سی بات ہے, تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں. وہ خوش ہو گئے کہ کوئی ایک بات کہہ کے ہم یہ کر لیں گے, وہ بات کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کو ایک مانو, چھوڑ دو اپنے بتوں کو, بزرگوں کو, ان کو پوجنا, ان سے مانگنا کرنا. بس یہ بات سنی تو غصہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ سواد میں بڑے خوبصورت طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ وہاں سے ان کے لیڈر اٹھے بڑے غصے میں اور کہنے لگے
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور کہتے بھی تھے, دیکھیے کہ شرک کیسے بندے کی مت مار دیتا ہے. کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہم اتنے مختلف خداؤں کو بلاتے ہیں उनसे मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं सब, फिर भी हमारे काम नहीं होते। तो अब तुम कह रहे हो कि भला सबको ही छोड़ के एक ले लें। सोचिएगा, यानी इतनों को मांगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई एक रिजर्व में, कभी एक काम आ जाएगा, कभी दूसरा आ जाएगा। उनके बकौल मोर चांसेस हैं कि बैकअप भी रखा हुआ है, कोई स्टपनी व्हील भी है, कोई मुश्किल में काम आएगा, कोई बच्चा दे देगा, कोई दौलत देगा, और तुम कहते हो इतनों को छोड़ के बस एक ले लें। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है 1,000 सजदों से आदमी को निजात। तौहीद इंसान की आज़ादी है, बंदगी में हुर्रियत है। एक का बन जाएंगे ना तो वो एक आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। आपने उन मासियों को देखा होगा जो घर घर जाके काम करती हैं, सुबह से शाम तक 8 घरों में गई, कहीं से भूखी निकली तो दूसरी जगह ने कहा उधर खा लिया होगा, वहाँ से भी भूखी, इधर से ज़रा बीबी को खुश कर दिया तो अगली बेगम नाराज़, उधर खुश करने में लग गई तो तीसरी नाराज़, और बाद सारे दिन की भूखी प्यासी घर में डांट खा पी के आ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा एक मासी जो फुल टाइम मेड किसी के घर में रहती है तो दुख सुख खुशी गमी वो उसकी मदद करते हैं। ये सिर्फ़ एक मिसाल है। याद रखिए कि अल्लाह की ज़ात हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। बहरहाल हुआ क्या, जिसके आसार थे, और वो क्या कि गम का साल शुरू हो गया। अबू तालिब का वक्त आ गया, मर्ज़ बढ़ता गया, बिल्कुल डेथ बेड पे हैं। अब आप बिल्कुल इस वक्त दिल दिमाग की खिड़कियां खोल के सुने, बहुत बड़ी इधर अकीदे की बात है जिस पे आज हम मुसलमानों को बड़े गौर व फिक्र की ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी अबू तालिब को अल्लाह के नबी गाहे बगाहे अपने अमल अपने रवैये से इस्लाम की दावत देते रहे। ये हो सकता है कि जो जो बंदा सफ़ा से ले के मक्का की गलियों और अकास के बाज़ारों में लोगों को दावत दे, वो अपने घर वालों को ना दे, देते होंगे ना, लेकिन उसका इतना तذکرہ नहीं मिलता कुरान में या सुन्नत में हमें कहीं। अखलाक की बहुत बड़ी गवाही था। अबू तालिब जो आपकी मदद करते थे तो आपके आला अखलाक की वजह से करते थे ना। अब डेथ बेड है, बिल्कुल आखिरी वक्त है, और अल्लाह के नबी वहाँ मौजूद हैं। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन नबी उमैया भी वहाँ मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने कहा, चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलेमा, इसके ज़रिए मैं अल्लाह ताला से आपके लिए सिफारिश कर दूंगा, हुज्जत कर लूँगा, आपके बारे में कह सकूँगा कि मेरा चचा इस्लाम पे मरा, तो आप उसकी सिफारिश कबूल करें। अब कहते हैं रिवायत में आता है कि करीब था कि अबू तालिब कहें, क्योंकि देखिए मौत के करीब ना पर्दे सारे खुल जाते हैं, हकीकत खुलती है, तो वो उन्होंने सोचा। लेकिन अपने दोस्त जो वहाँ बैठे थे उनकी मौजूदगी की वजह से ज़रा सा हिचकिचाए। जब उनके दोस्तों ने देखा कि इनके अंदर थोड़ा सा झुकाव आ रहा है तो बोले, अबू तालिब क्या अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से एराज करोगे, यानी अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान बिरादरी के मरते मरते बिरादरी या बाप दादा के तरीक़ों को छोड़ दोगे और इनसे बराबर बातें करते रहे, यानी उनको इन्वॉल्व किया, डिस्ट्रैक्ट किया, बातों में लगा लिया, यहाँ तक कि आखिरी बात जो उन्होंने कही ये कही कि अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर, फिर इसी पर इनका इंतकाल हो गया। अब आप सोचिए कि नबी के दिल पे क्या गुजरा होगा। आज हम नातों और शेरों की सूरत में ये मैसेज देते हैं कि अल्लाह के नबी मुख्तारे कुल हैं, करनी वाले, बिगड़ी बनाने वाले, हिदायत देने वाले, तो अबू तालिब को क्यों नहीं दे सके? दे सकते थे ना अगर ये हमारा अकीदा ठीक होता। सगा चचा, और चचा भी नहीं बाप, और बाप भी नहीं मोहसिन और मुरब्बी और देने वाला। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आखिरी वक्त तक कहा, ना माने, फिर आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने चचा की बख्शिश की दुआ करूँगा जब तक कि मुझे रोका ना जाए। आपने बख्शिश की दुआ शुरू कर दी तो सूरह तौबा की आयत 113 नाजिल हो गई।
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم।
कि नबी और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत करें अगरचे वो कराबतदार ही क्यों ना हो, जबकि इन पर ये वाज़े हो चुका है कि वो जहन्नमी हैं। और एक और आयत सूरत कसस की आयत 56, ऐसा नहीं कि आप जिसे पसंद करें उसको हिदायत दे दें, इसको आप दो दफ़ा अपने नोट्स में ख़ुद लिख लें, इन नकला तहदी मन अहबबता। आप जिसे चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, क्योंकि अल हादी अल्लाह है। अगर नबियों के हाथ में हिदायत होती ना तो इतने पत्थर ना खाते, पहले ही दिन एक ऐसे तीर चलाते सब हिदायत वाले हो जाते। इतनी मुखालफत क्यों हुई नबियों की? क्योंकि हिदायत उनके हाथ में नहीं थी। यहाँ तक आता कि जब अल्लाह के नबी को फिर मना कर दिया गया तो आप फिर अबू तालिब से बेनियाज हो गए। ये वो हिदायत की जो दुआ है ना, ये तो मांगते रहे कुछ अरसा, लेकिन जब कहते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी वहाँ से उठे और बिल्कुल बेनियाज होके चले गए। यह हमारे लिए एक नुक्ता है। ज़िंदगी ज़िंदगी, मुशरिक काफिर और इससे भरे हुए जो भी आगे पीछे के लोग हैं उनकी दुआ की जा सकती है, इस्लाह की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जब अबू तालिब के कफन दफन का वक्त आया तो अल्लाह के नबी उसमें शामिल नहीं हुए। हज़रत अली और उनके जो बेटे थे उन्होंने मिलके इनको दफन किया। ये कितना बड़ा एक इम्तिहान होता है एक बंदे का। देखिए, कोई काफिर है या मुसलमान है, लेकिन हमारे दिल के तार उससे अगर बंधे हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है उसको एकदम छोड़ना। लेकिन अल्लाह का दीन यही सिखाता है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर वहाँ खून के रिश्ते दब जाते हैं। इनकी वफ़ात रजब या रमज़ान सन 1090 में हुई, शाबे अबी तालिब से निकलने के तकरीबन 6 या 8 महीने गुजर चुके थे। अल्लाह के नबी के लिए अब एक मज़बूत किला और उसकी दीवार टूट चुकी थी। लोगों को समझ आ रहा था कि ये क्या होगा। हज़रत अब्बास ने एक दिन अल्लाह के नबी से पूछा कि आप अपने चचा के क्या काम आ सके। नोट कीजिए कि अबू तालिब ने इतना कुछ जो किया, आपकी हिफाजत की, आपके लिए दूसरों पर बिगड़ते थे, तो क्या आप भी कुछ उनको फ़ायदा देंगे? आपने फरमाया, वो जहन्नम की एक सतही जगह पर है, यानी बहुत गहराई में नहीं उनको डाला जाएगा, क्योंकि जितना गहरा होता है बंदा आग के अंदर उतना अजाब या सख्ती ज़्यादा होती है, ऊपर रखे जाएंगे, और अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे गहरे खड में होते। एक और रिवायत में भी आता है कि एक शख्स ऐसा है कि जिसको पाँव में आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग हंडिया की तरह खौलने लगेगा, और वो शख्स अबू तालिब होंगे। क्या हमें मस्जिदों को चंदे देना काम आएगा अगर अंदर शिर्क है? इस्लाम इस्लाम सारा दिन आप रोते रुलाते रहे और आपके दिल में इस्लाम की वो मोहब्बत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह के वो तकाजे नहीं, बचेंगे? आपको पता है कि क़यामत के दिन के नामों में एक नाम यौमुत तगाबुन भी है। सूरह तगाबुन में आप पढ़ेंगे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट्स निकलेंगे। आपने कभी इम्तिहान दिया हो ना तो अमूमन रिज़ल्ट आपकी तवक्को पे ही होता है। आपने 100 में से 90 सोचे थे, 88 आ गए, या 92 आ गए, 95 भी आ सकते हैं, मुमकिन है, होता है ऐसा अक्सर। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट आऊँगी और वहाँ पता चला कि आपको पास होने के लिए भी नंबर लेने पड़े, ग्रेस मार्क्स? ये क़यामत के दिन होगा। कई शख्सियात जो नक्शे पे दुनिया की उभरी फिरती हैं ना, क़यामत के दिन उनके साथ हालात बड़े सख्त होने वाले हैं। तो कोई अपनी किसी जुज़वी नेकी पे खुश ना हो कि चूँकि हम खाना पका के मस्जिद में भेज देते हैं, चूँकि हमने इस दिन जाके मस्जिद में झाड़ू लगा दिया था। अपनी इस्लाह की फ़िक्र कुरान कितनी ज़्यादा हमें सिखाता है, किस हद तक इंसान हरीस हो इस बात का कि कहीं मैं गलत काम ना कर दूँ। अल्लाह तो फासिकों से अपने दीन के काम करवा लेता है, तो अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी में हिदायत की तौफीक दे। अल्लाह के नबी तन्हा रह गए, लेकिन याद रखिए, एक बात याद रखिए, आप सबके भी काम आएगी। जब हम बहुत मोहब्बतों में घिरे रहते हैं ना, अपनों में रहते हैं, तो हम खुद को डिस्कवर नहीं कर पाते। जब हम तन्हा रहते हैं ना, फिर हमें अपनी असल छुपी हुई सलाहियतों का पता चलता है। एक बच्ची माँ बाप के घर में होती है, वो ऐसे ही बस फुदकती फिरती है, कभी चूल्हा भी नहीं जलाया, बड़ी पतीली पकड़ ली तो माँ कहेगी तुमसे नहीं पकड़ी जाएगी। भाई भी लाड करते, माँ भी करती, बहनें करती। कभी देखिए वही लाडलियाँ जब ब्याह के ससुराल में जाती हैं ना, और सारे बैठे टीवी देख रहे हैं और अकेली बहू को डाल दिया कि सारा कुछ करके निकलना, फिर उसको पता चलता है मैं क्या कर सकती हूँ। माँ के घर चाय का पानी भी नहीं कभी रखा था, यहाँ बड़े बड़े पतीले खोलती है और पकाती है। तन्हाई में बंदे को समझ आती है। एक दूसरी बात भी अभी याद कर लें कि अल्लाह ज़िंदगी में कभी ज़रूर एक बार आपको तन्हा करेगा, सब रिश्ते आपको ऐसे लगेगा सांस बंद होने लगा, घर के हालात भी ख़राब होंगे, माली हालात भी ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान में भी कोई गम की बात हो जाएगी, इधर कोई काम करते तो ले ऑफ हो जाए, कुछ भी होगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे सारे आगे पीछे दीवारें खिंच गई हैं। ये क्यों करता है अल्लाह? ताकि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आए। कभी ज़िंदगी में ऐसे बंद लम्हे आए ना, तो एक तो वो दुआ मांगा करें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी जब कुछ भी नहीं था पास, हालात बंद होने लगते हैं, समझ ही नहीं आती दुआ किन लफ्ज़ों में मांगूँ। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उस दुआ को आप उसके साथ ही खास कर ले, सिर्फ आपको एक फीलिंग्स देने के लिए बताई गई ये बात। और दूसरी बात है कि उसके आगे झांके कि अल्लाह मुझसे क्या खैर लेना चाहता है। उस वक्त अगर आप अपनी तौहीद को प्रूव कर देना तो खैर के दरवाज़े खुल जाएंगे। और अगर उस वक्त भी रोते धोते लोगों को ही ढूंढते रहेंगे ना, तो हो सकता है कि उस गम से बड़ा गम आगे आ जाए या बहुत बड़ी खुशी आ जाए, लेकिन आपका दीन बिगड़ जाए। एक तरफ बाहर का सहारा टूटा, दूसरी तरफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई। वो कहते हैं ना कि मुसीबत तन्हा नहीं आती। अबू तालिब की वफ़ात का भी ज़ख़म हल्का नहीं हुआ कि हज़रत खदीजा वफ़ात पा गई। 2 महीने या बास कहते सिर्फ 3 दिन बाद रमज़ान 10 नबवी में इनकी वफ़ात हो गई। कह लीजिए कि अगर अबू तालिब बाहर की दुनिया में आपकी ढारस थे ना, तो बीबी खदीजा घर की ज़िंदगी में आपकी गमख्वार थी। शुरू दिन से तबलीग के अंदर आपकी मददगार, आपको सहारे देने वाली, जान माल से आपकी गमगुसारी करने वाली, अज़ियत और गम में बराबर की शरीक थी। कि आपने कहा कि जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ कुफर किया वो मुझ पर ईमान लाई, जिस वक्त लोगों ने मुझे छुटलाया उन्होंने मेरी तस्दीक की, जिस वक्त लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे माल में शामिल किया, और अल्लाह ने मुझे इनसे औलाद दी और दूसरी बीवियों से कोई औलाद ना दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए, कहा ये कब हुआ? जब आप गारे हिरा में थे तो हज़रत खदीजा आपके लिए खाना लाती होती थी। तो जिब्राईल ने अल्लाह के नबी को पहले से ख़बर दी, कहा या रसूलुल्लाह ये खदीजा आ रही हैं रदी अल्लाह अन्हा, इनके पास एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना या पानी है, जब वो आपके पास आ जाएं तो आप इन्हें इनके रब की तरफ से सलाम कहें और जन्नत में मोती के एक महल की खुशखबरी दें जिसमें न शोरो शगब होगा, न दरमांदगी और न थकन होगी। अल्लाह के नबी जब हज़रत खदीजा का जिक्र करते तो उनके लिए दुआए रहमत करते, जब इनका जिक्र करते तो आप पर रिक्कत तारी हो जाती, जब बकरी ज़िबा करते तो इसका गोश्त खदीजा की सहेलियों को भेजते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे अल्लाह की नबी की बीवियों में से किसी पर रश्क नहीं आया कभी, जेलसी जिसको आप कह लें, सिवाय खदीजा के, हालांकि मैंने खदीजा को पाया नहीं है। इतनी अल्लाह के नबी को उनसे मोहब्बत थी। और आप देखिए कि इनके फ़ज़ाइल में एक और बात भी है कि वफ़ात तक नबी की अकेली बीवी रही। देखिए शराकत तो कहीं भी बंदा पसंद नहीं करता, लेकिन सुख नापे की शराकत औरत के मिजाज में नहीं है बर्दाश्त करें। अल्लाह ने नबी को और बीवियाँ दी लेकिन हज़रत खदीजा को इस तकलीफ़ से आज़ाद रखा, यानी आपकी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की कोई दूसरी बीवी नहीं थी। और आप इनका जिक्र खैर कहा करते थे, आपने कहा कि जब लोग मुझे पत्थर मारते थे तो खदीजा अपने दुपट्टे की धजियां मेरे जख्मों पे बांधती थी। और खदीजा से कितनी मोहब्बत थी। हज़रत आयशा कहती हैं कि एक मौके पे खदीजा की बहन हाला, बहनों में कुछ ना कुछ एक रंग मिलता है, रंग शक्ल मिले ना मिले, कभी आदत मिलती है कभी आवाज़ मिलती है, तो कहती है कि एक मौके पे हाला बिनते खुवैलद आई जो हज़रत खदीजा की बहन थी, तो अल्लाह के नबी के पास आने की इजाज़त मांगी। कहती हैं जब वो आई उनकी इजाज़त मांगने की आवाज़ सुनकर अल्लाह के नबी एकदम जैसे उनके चेहरे पे एक रंग आया, तो आपने कहा कि मुझे खदीजा का इजाज़त मांगना याद आ गया, यानी बहन को देखकर उसकी बहन याद आ गई। आपने फरमाया कि अल्लाह ये तो हाला बिनते खुवैलद हैं, मुझे ये देखकर रश्क आ गया। मैंने अर्ज़ किया आप कुरैश की बूढ़ी औरतों में से एक भारी गालों वाली औरत को याद करते हैं जिसकी पिंडलियां बारीक थीं, यानी हज़रत खदीजा का हुलिया, ये चेहरा गोल था भरा हुआ था और जिस्म दुबला था, और एक लंबी मुद्दत हुई वो इंतकाल भी कर चुकी। तो अल्लाह ने तो आपको इनसे बेहतर बदल अता कर दिया। यानी हज़रत आयशा लाड में कह रही हैं कि वो बूढ़ी औरत आपको अभी भी याद है जबकि अल्लाह ने आपको दूसरी दे दी। तो यहाँ से आप देखिए कि अच्छी बीवी मर्द के दिल में जगह बना लेती है और कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती, याद करें। तो अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा का सहारा भी अल्लाह के नबी से दूर कर दिया। अब आप क्या कहेंगे, नबी क्या हैं, मुख्तारे कुल? अपनी ज़िंदगी में खुद खैर लाने वाले नहीं ला सकते? नबी की गोद में आगे आप पढ़ेंगे बेटा मर रहा है, इसी से पहले अल्लाह के नबी का अपना बेटा आपकी गोद में मर रहा है, आपका नवासा आपकी गोद में मर रहा है, कुछ नहीं कर सके। तो अकीदे की आज से इसलाह कर ले, हालांकि कुरान ने बहुत करनी है आपकी इंशाल्लाह, कि अल्लाह जिस चीज़ को करना चाहे कोई नहीं रोक सकता, और जब अल्लाह कुछ ना करना चाहे तो कोई चाहे नबी क्यों ना हो, नबियों से भी तभी काम होते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है। हज़रत खदीजा और अबू तालिब की वफ़ात के बाद तो आप कह लें कि अल्लाह के नबी पर मुसीबतों का पहाड़ गिर गया, एक तांता बन गया, मुशरिकीन की जुरत बढ़ गई, खुलकर अजियतें देने लगे। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी हर वाक्य से शिद्दत से मुतासिर होने लगे, चाहे वो पिछले वाक्यात से छोटा और मामूली ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि कुरैश के एक अहमक ने आपके सर पर मिट्टी डाल दी, जिसे आपके एक साहबजादी धोते हुए रोती जा रही थी। तो आपने इनसे कहा कि बेटी ना रो, अल्लाह तुम्हारे बाप की हिफाजत करेगा। और इसी दौरान आप ये भी फरमाते जा रहे थे कि कुरैश ने मेरे साथ कोई ऐसी बदसलूकी न की जो मुझे नागवार गुजरी हो, यहाँ तक कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया। तो यहाँ आप देखिए कि इन मुश्किलात में अब आगे हालात बदल रहे हैं। कभी आपको एक सदमे के बाद दूसरा सदमा मिले ना, एक गम के बाद दूसरा गम, तो समझ जाए कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है। कभी आपने देखा होगा कि जब कभी जलजला आना होता है ना, तो उससे पहले एक खामोशी छा जाती है। बाज़ लोग बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि दरख्तों से परिंदे उड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शायद ज़मीन में कोई हलचल शुरू हो चुकी होती है, जड़ों से पता चल जाता है और उसके बाद जलजला आता है। तो ज़िंदगी में हालात के उतार चढ़ाव पे गौर किया करें, हर वक्त ही हाल दोहाल में ना रहा करें, ये हो गया मर गए, ये नहीं हुआ वो हो गया, जॉब चली गई, मुश्किल में आ गई, ये हो गई। फहम मांगिए, फरासत मांगिए, मुश्किलात और जलजलों के पीछे जो खैर निकलनी है ना, उसको देखा करें। अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत खदीजा की वफ़ात के एक माह बाद शवाल सन 1090 में हज़रत सौदा बिनते जमा से शादी की। पहले से बेवा थी, चचाजाद भाई सकरान बिन अमर के निकाह में थी। ये दोनों साबिकीन अल अव्वलीन में से थे, यानी बहुत नेक अच्छे सहाबी थे, हबशा हिजरत करने वाले थे, फिर मक्का पलट आए। मक्का में सकरान का इंतकाल हुआ। जब इनसे हज़रत सौदा की इद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह के नबी ने शादी की। चंद साल बाद हज़रत सौदा ने अपनी बारी हज़रत आयशा को हिबा कर दी। यहाँ आप देखिए, अपने मुआशरे के रस्म व रिवाज को भी सामने ले आइए। एक महीने बाद शादी, हम होते तो क्या कहते, अभी तो जी उसकी कब्र की मट्टी भी गीली नहीं हुई, और न जाने नाउज़ुबिल्ला क्या क्या गंद बोलते कि पहले से इरादा था। नहीं, एक महीना। आपको पता कि एक मर्द अपनी बीवी के फौत होने के चौथे दिन शादी कर सकता है? मैं सोचती हूँ जितना गम होता है कर लेनी चाहिए। अगर आप सब वाकई महसूस करें ना, अगर आप अपने शौहरों से मोहब्बत करती हैं तो आप अपने शौहरों को कह के जाएं कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी में मर जाऊँ तो चौथे दिन शादी कर दें। और अगर खुदा न खासा ज़िंदगी में पता चल जाए ना कि मौत करीब है, ऐसी बीमारियाँ होती हैं, ज़िंदगी में कर दें शौहर की शादी, दिल खोलें। मैं तो इस पर बहुत दिल बड़ा रखती हूँ, अल्लाह बचा के रखे आजमाइशों से, मुझे पता चल जाए मेरे शौहर को मेरा गम मिलना है तो मैं तो पहले ही को गम ख्वार उनको दे जाऊं। क्यों? कि मेरे शौहर दुखी रहे। लेकिन ये कब होता है? जब बंदे की नज़र सिर्फ इस दुनिया पे नहीं होती। दूसरी बात देखिए कि हज़रत सौदा कोई 16 साल की उछलती कूदती जवान औरत नहीं थी। हमारे यहाँ दूसरी शादी इसलिए भी तो बदनाम है ना कि 16 साल की दोशीज़ा चाहिए, चाहे 40 साल का बुढ़ा या 60 साल का। हज़रत सौदा भारी जिस्म की थी, सौदा कहती काली औरत का स्याह रंग की थी और उम्र रसीदा थी। लेकिन अल्लाह ने कहा तो कर लो तो कर ली। हर शादी के पीछे कोई रोमांस नहीं होता, कभी ज़रूरत भी होती है। इसके बाद एक साल और गुजरा, शवाल सन 1190 में आपने हज़रत आयशा से निकाह किया। ये भी मक्का में हुआ। حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی. 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر سن 1 ہجری میں شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی. اس وقت ان کی عمر مبارک 9 برس تھی. اللہ کے نبی کی سب سے محبوب اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھی. اور ان کی شان آپ نے سننی ہے تو انشاءاللہ آپ سورۃ الاحزاب جب پڑھیں گے آپ کو وہاں ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں. رہ گئی بات اگر حضرت عائشہ کی عمر سن کر کچھ آپ کے دل میں چونچا ہوا ہے تو بات سمجھ لیجئے کہ عائشہ کا باپ موجود تھا, اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اور عائشہ کی بہنیں اور ماں اور پورے مکہ کا معاشرہ جو اس وقت اللہ کے نبی کا دشمن بنا ہوا تھا, جو بات پکڑنے کو تیار تھا کہ پروپیگنڈا چھوڑیں کوئی, انہوں نے آج تک حضرت عائشہ سے آپ کے نکاح پر کوئی بات نہیں کی. یہ آج سے پیچھے کوئی 10-50-100 سال چلے جائیں, یہ شوشے آج کے ماڈرن دور کے ہیں کہ 6 سال کی بچی اور 8 سال کی بچی اور فلاں. بس اتنی حکمت سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنے نبی کی شادیوں کے ذریعے ہر حجت تمام کرنا چاہتا تھا. نبی کی حیثیت ایک قسم کے رول ماڈل کی ہوتی ہے کہ کل استثنائی یعنی خاص حالات میں نکاح کہاں ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا, اس کے دروازے کھلے رہے. اسی نبی نے بتا دیا کہ شادی کی صورت میں کف ڈھونڈو, یعنی ہر لحاظ میں برابری. دیکھو عمر, دیکھو نسب, دیکھو عقل, دیکھو دین, دیکھو خوبصورتی بھی دیکھ لو, کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں ایڈورس کنڈیشنز ہوں تو پھر بچی سے بھی نکاح حلال ہے, اس پہ کوئی نہیں کہتا. دیکھیے آگے پیچھے کے نکاح ہیں. کبھی آج تک آپ نے ویسٹرن کلچر سے یہ سنا کہ اللہ کے نبی 25 سال کا جوان ینگسٹر لڑکا اور 40 سال کی بوڑھی عورت سے شادی کر گیا اور اس بیچاری بڑھیا کے ساتھ زندگی گزار لی, دوسری شادی نہیں کی. سارے جذبے تو جوانی میں ہوتے ہیں. آپ سوچئے کہ حضرت ختیجہ سے جب شادی ہوئی تھی تو آپ اس وقت 25 سال کے تھے, پھر 40 کے ہوئے, 40 کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 سال 51 ایئرس کے ہونے پہ ینگ بچی سے شادی ہو رہی ہے. کیا اس عمر میں جذبات ہوتے؟ جذبوں کا تو سارا وقت ختیجہ کے ساتھ گزر گیا. یہ تو آخری شادیاں آپ کی ساری پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. میں یہاں آؤں گی تو ڈیٹیل بہت لگ جائے گی, مجھے پتا ہے آپ کو یہ موضوع اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہم زیادہ کر نہیں سکتے. بات صرف 50 سے لے کے 60 کے جو بیچ کے سال تھے نا, اس میں ساری شادیاں ہوئی ہیں اور وہ مجبوری تھی. ایک بوڑھی عورت سے شادی کر کے دکھا دیا, کل مجبوری ہوگی, کرنا پڑے گا, تو اجازت ہے, جائز ہے کسی کے ساتھ غیر محرم کے طور پہ گھر میں رہنے کی بجائے شادی کر دو. کبھی آپ دیکھیں جب پارٹیشن ہوئی, پاکستان بنا, کوئی جنگی حالات آگے کہیں آئیں گے, کئی بچیاں بالکل کنواری چھوٹی بچیاں یتیم ہو جائیں گی, اب ان کو کدھر دو؟ اب ایک جوان مرد ہے اس کو وہ بچی مل جاتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ایسا نا, اس کو بیٹی بنا لیا, بہن بنا لیا, اسلام نہیں مانتا اس کو. حالات کا تقاضا کبھی کبھی اس حد تک ہوتا ہے کہ محرم بنانے کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے. کئی حالات میں اپنے بیٹوں سے شادی کر کے بہو بنانا پڑتا ہے. اور دوسری حکمت حضرت عائشہ کی شادی میں یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ ایک ایسی عورت نبی کے عقد میں دینا چاہتا تھا جو day 1 سے نبی کی زیر تربیت پلے. ہر عورت شادی ہونے تک ایک خاص رنگ ڈھنگ کی بن چکی ہوتی ہے. ہم سب عورتیں ہیں, جتنی بھی ہمارے شوہر ہمیں ڈھالنے کی کوشش کریں گے نا, لیکن پھر بھی بچپن کی تربیت کا کوئی اچھا یا برا اثر رہتا ہی ہے. عائشہ کی صورت میں اللہ نے ایک بچی کہہ لیجئے نبی کی کنسٹڈی میں پلوائی, انہوں نے علم سیکھا, تربیت سیکھی, اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً نصف صدی تک حضرت عائشہ جو تھی وہ علم کی خدمت کرتی رہی. سیکھا اور سیکھا, اور عقل مند اور خوبصورت بات کرنے والی, اور جس کو آپ کہنا چاہیے کہ فوری بات کرنے والی, جس کو کہنا چاہیے ایکٹیو مائنڈیڈ تھی. اور چونکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اگر بوڑھی ہوتی تو کچھ سالوں میں فوت ہو جاتی, چھوٹی تھی تبھی تو اتنی لمبی عمر ملی نا بعد میں, تو لہٰذا اس پہ مجھے اور آپ کو زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا. ایک تیسری بات نوٹ کر لیں, آپ چھیڑا نہ کریں یہ باتیں. کوئی آپ سے اگر نان مسلم یا کم علم والا یا کم عمل والا یا بگڑا ہوا مسلمان عائشہ کی بات پوچھے, ایک لفظ نہ بولیں اس کو کہ ادھر آؤ, ایک کلمہ بس بتاؤں گی آپ کو, لا الہ الا اللہ. آپ کے لیول سے یہ اونچی بات ہے. ابھی یہ باتوں کا جواب کبھی نہ دے, لیکن آپ کا شرح صدر تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ سے شادی کے ذریعے ایک اور رسم بھی ٹوٹی تھی. اور وہ کیا تھی کہ اس دور میں منہ بولے بھائی, یعنی حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے, دوست تھے نا, कि बस भाई जैसे हैं, जैसे आप कह देते हैं, मुंह बोले भाई की बेटी से निकाह को हराम समझते थे, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे भाई इसको तो मैं अपना चचा समझती हूँ या मैं तो इसको अपने बाप के बराबर समझती हूँ, तो उस रस्म को भी तोड़ा गया, जैसे कि हज़रत ज़ैनब के निकाह के साथ मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह की रस्म टूटी थी। तो नबी की शादियाँ भी असल में रस्मों को टूटने वाली होती हैं। लेकिन बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत बड़े तगैरात आए, मक्का में बिल्कुल हालात बंद हो रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि दीन का ये काम अब ख़त्म हो जाएगा।